انداز میں وہ ہمارے سامنے آ جائے. تو یہ جو دوسرا حق ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تیسرا اور چوتھا حق ہم میں سے ہر ایک کا انفرادی ہے. بنیادی طور پہ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جو کچھ ہمیں سمجھ میں آئے ہم اس پر عمل کی کوشش فوراً شروع کر دیں. جو چیز انسان کے عمل میں آ جاتی ہے وہ اس کو یاد رہتی ہے, اور جو عمل میں نہیں ہوتی اس کو پھر یاد رکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ وضو ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو وضو رٹنا پڑتا ہو, کہ وضو یوں شروع کرتے ہیں پھر یوں کرتے ہیں پھر یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں. کسی کو نہیں رٹنا پڑتا کیونکہ سب وضو کرتے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ وضو کیسے ہوتا ہے, سب کو یاد ہے. لیکن اگر وضو یا نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق نہ ہو تو اب سنتوں کو پھر رٹنا پڑتا ہے کہ یہ ایک سنت ہے, یہ دوسری سنت ہے, یہ تیسری سنت ہے. تو قرآن کریم کے مفہوم کو بھی یاد رکھنے کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس پر عمل شروع کر دیا جائے. جو بھی ہمیں اس وقت عمل کی بات سمجھ میں آئے اس پر ہم فوری طور پر عمل شروع کر دیں, انشاءاللہ وہ ہمیں یاد رہے گی. ہمارے عمل میں جب آ جائے گی تو یاد رہے گی. اور چوتھی بات یہ کہ پھر جو کچھ سمجھ میں آئے, جب یقین ہو جائے کہ صحیح سمجھ میں آیا ہے, صحیح لوگوں سے سمجھ میں آیا ہے, صحیح جگہ سے سمجھ میں آیا, تو پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا, یہ اس کا اہتمام کیا جائے. اب ہم شروع کرتے ہیں. قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. فاتحہ عربی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی, آغاز کرنے والی, کیونکہ قرآن کریم کا اس سے آغاز ہو رہا ہے, اس وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اس کے دیگر ناموں کے اندر ام الکتاب کا نام بھی آتا ہے, اور اساس الکتاب یا اساس القرآن کا نام بھی آتا ہے. سورہ شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ شفا ہے, اس کے اندر ہر چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اور قرآن کریم کی بنیاد قرار دیا جا رہا ہے, اساس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد, بیس قرار دیا جا رہا ہے سورہ فاتحہ کو. اور سورہ فاتحہ کی حیثیت قرآن کریم کے لیے دیباجے کی بھی ہے اور خلاصے کی بھی ہے. دیباجہ یعنی کسی بھی کتاب کے اندر شروع میں ایک مقدمہ لکھا جاتا ہے جو اس پوری کتاب کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے, اس کو اردو کے اندر دیباجہ یا فارسی کے اندر دیباجہ کہا جاتا ہے. اور آخر کے اندر کتاب کے ایک خلاصہ آتا ہے جو پوری کتاب کی ایک سمری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ پیچھے جو مضامین آئے ان کا خلاصہ یہ ہے. سورہ فاتحہ کے اندر یہ دونوں ہی خصوصیات موجود ہیں. ایک اعتبار سے یہ قرآن کریم کا دیباجہ ہے, پورے قرآن کریم کا تعارف ہے, اور دوسرے اعتبار سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے. جو مضامین قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں ان سب کو, ان سب کی ایک جھلک جو ہے, گویا کہ قرآن کریم کی پوری ایک جھلک سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. بنیادی طور پر قرآن کریم کے اندر تین مضامین بیان ہوئے ہیں. بنیادی طور پر قرآن کریم کے اندر تین عقائد یا تین مضامین بیان ہوئے ہیں. عقیدہ توحید بیان ہوا ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے, اس بات کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے, یہ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے. دوسرا ایک اہم مضمون ہے. اور تیسرا ایک اہم مضمون جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے. اور سورہ فاتحہ کے اندر یہ تینوں ہی چیزیں موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا بھی بیان ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پالنے والی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ توحید ہی کی طرف اشارہ ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پیغمبروں کی طرف بھی اشارہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے, وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. اور انعام یافتہ لوگوں میں سب سے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ جو ہیں وہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو پیغمبری کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا. اور بدلے کے دن سے مراد آخرت, قیامت کا دن ہے. تو آخرت کے عقیدے کو بھی بیان کیا جا رہا ہے, توحید کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم کا پورا خلاصہ قرار دیا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس سورت کو. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی ہے, نہ زبور میں, نہ انجیل میں. سورہ فاتحہ جیسی سورت جو ہے وہ کسی اور کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی, یہ قرآن کریم کی خصوصیات میں سے ہے. اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان فرمائی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ کس چیز میں ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. عربی کی گرامر اور عربی کے بلاغت کے اعتبار سے یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ جب مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے، آبجیکٹ کو نہیں ذکر کیا جاتا کسی جملے کے اندر، تو وہ بالکل عام ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنی ہے. کسی ایک مخصوص چیز کا تذکرہ نہیں فرمایا، چھوڑ دیا. ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. کس چیز میں مدد طلب کرتے ہیں؟ ہر چیز میں مدد طلب کرتے ہیں. یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں تو کیا سکھایا گیا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جائے. حالانکہ جوتے کا تسمہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، بڑی آسانی سے جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، دستیاب ہو سکتی ہے، لیکن جوڑا جا رہا ہے کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور قرآن کریم کا آغاز بھی کس سے کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نا، یہ ہر کام کے اندر پڑھنے کی چیز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل امر ذیبال لم یبدا بسم اللہ فهو ابتر او فهو اقطع، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر اہم کام جو بسم اللہ سے جس کا آغاز نہ ہو تو وہ پورا نہیں ہوتا، یعنی اس کی جو حقیقت ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے، وہ پوری طرح سے حاصل نہیں ہوتا. اس سے یہ بتلا دیا کہ ایک مسلمان کے طرز عمل میں اور ایک کافر کے یا غیر مسلم کے یا اللہ پر یقین نہ رکھنے والے کے طرز عمل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مسلمان ہر چیز کو اللہ سے جوڑتا ہے، ہر کام کو اللہ سے جوڑتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر پوری طرح سے مشاہدہ کیا جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں نا، مختلف اوقات کی، کپڑے پہننے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، ہر موقع کی دعا ہے. یہ دعائیں اصل میں کیا ہیں؟ یہ اصل میں انسان کو اللہ سے جوڑتی ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ کہ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کے، لوگوں کی فرما برداری سے نکال کے اللہ کی عبادت کے ساتھ جوڑ دینا، اللہ کے ساتھ جوڑ دینا. تو ہر کام کے اندر اللہ کی عبادت، ہر کام کے اندر اللہ کی طرف نسبت، اللہ ہر کام کے اندر اللہ کی طرف توجہ جو ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے. اور یہاں پر بھی جو ہے الرحمن الرحیم جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر بھی آ رہا ہے. الرحمن کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر چیز کو شامل ہے. اور الرحیم کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت مکمل ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ ورحیم الآخرہ. دنیا کے اندر اللہ کی رحمت مسلمان کو بھی حاصل ہے، کافر کو بھی حاصل ہے، لیکن آخرت کے اندر جو اللہ کی رحمت ہے وہ صرف مسلمان کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں ہے. اس وجہ سے کہ وہ مکمل رحمت ہوگی، اور مکمل رحمت جو ہے وہ صرف مسلمان کو مل سکتی ہے، اللہ کے انکار کرنے والے کو نہیں مل سکتی. یہاں ایک اور حدیث شریف کا تذکرہ بھی اہمیت والا ہوگا، جو ہماری عمل کی چیز ہے. میں نے ذکر کیا کہ جو چیز عمل کی ہے اس کو فوری اپنایا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے. مراد سورہ فاتحہ ہے. قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی، میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے جو ہے وہ میری تعریف بیان کی، حمد بیان کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جاتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جاتا ہے مجدنی رب عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. یعنی آدھے کا مجھ سے تعلق ہے، ایاک نعبد ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور آدھے کا بندے سے تعلق ہے، ایاک نستعین ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. फिर अल्लाह सुबहानहू तआला फरमाते हैं कि मेरा बंदा जो मांगता है ना वो उसको दे दिया जाएगा, और वो आगे मांगा जा रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ूबी अलैहिम वद्दालीन, कि हमें सीधा रास्ता दिखला दीजिए, वो सीधा रास्ता कि जिन पर जिन उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर आप नाराज हुए, जिनसे आप नाराज हुए, जिन पर आपका गुस्सा हुआ, जो गुमराह हो गए उनके रास्ते पर ना चलाइएगा। तो सीधा रास्ता क्या होगा ये भी खुद कुरान करीम ने बयान फरमा दिया। आज बड़ा सवाल होता ना कि भाई कौन से दीन पर अमल करें, कौन सा रास्ता सीधा है, तो बड़े वाज़े अल्फाज में अल्लाह सुबहान ने फरमाया सिरात अल्लज़ीन अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। यहाँ सूरह फातिहा में तो उसको नहीं बयान फरमाया, लेकिन एक और सूरत में अल्लाह सुबहानहू तआला ने फरमाया उलाइकल लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, जिन लोगों पर अल्लाह ने इनाम फरमाया वो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और सिद्दीकीन है, किसी भी नबी के जो सबसे करीबी साथी होते हैं वो सिद्दीकीन कहलाते हैं, वश्शुहदा अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं, वस्सालिहीन और अल्लाह के नेक बंदे, इनके रास्ते पे जो चलेगा वो नेक है, वो सीधे रास्ते पे चल रहा है और इनका रास्ता बड़ा ही वाज़ह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा जब पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा अना अलैहि वा असहाबी, जिस पे मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं वही सीधा रास्ता है। तो इख्तलाफात से निकलने का रास्ता यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाए और हज़रत सहाबा इकराम के तरीके पर अमल किया जाए, तो ये जो मुख्तलिफ मसाइल हैं हमारे वो हल हो जाएंगे, मुख्तलिफ बुनियादों पर जो हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े हैं उस पर उसका हल जो है वो यही है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और हज़रत सहाबा किराम का अंदाज़ जो है उस पर अमल किया जाए। एक और बात जो बड़ी काबिल गौर है यहाँ पर और जिसके एतबार से हमारे यहाँ बड़ी कमज़ोरी पाई जाती है वो ये कि अगर इंसान कामयाबी चाहता है तो दोनों चीज़ें उसको चाहिए, किताबुल्लाह भी चाहिए और रिजालुल्लाह भी चाहिए। किताबुल्लाह अल्लाह की किताब भी चाहिए और वो लोग भी चाहिए जो किताब पर अमल करके दिखाएं और वो अल्लाह वाले कहलाते हैं। मसला जब पैदा होता है कि जब इफरात तफरीत होती है, कुछ लोग किताबुल्लाह को इतनी अहमियत देते हैं कि कहते हैं रिजाल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, औलिया अल्लाह की कोई हैसियत ही नहीं है, अल्लाह वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये भी गलत तरीका है। और कुछ लोग दूसरे पहलू पर चले जाते हैं कि जनाब फुला वली साहब फुला हजरत साहब फुला पीर साहब फुला वो साहब किताब क्या कह रही है, अल्लाह की किताब क्या कह रही है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, दोनों चीज़ें कहाँ ले जाएंगी, गुमराही की तरफ ले जाएंगी। अगर सिर्फ किताब को पकड़ेंगे और किताब पर अमल करके दिखाने वालों को निगलेक्ट करेंगे तो भी मसला है, और अगर कुछ लोगों को शख्सियत परस्ती करेंगे किताबुल्लाह को छोड़ेंगे तो भी मसला है। कामयाबी इसी में है कि किताब भी चाहिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता जो कुरान करीम की शक्ल में, और सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम किन के रास्ते से चलना है, अनअमता अलैहिम जिन पर अल्लाह सुबहान तआला ने क्या फरमाया इनाम फरमाया। तो ये खुलासा हो गया सूरह फातिहा का, सूरह फातिहा के बयान में अमूमन वक्त ज़्यादा लगता है तो क्या कहा जाए कि खुलासा कहना भी इसको मुनासिब नहीं है, बल्कि कुरान करीम का खुलासा वैसे हो नहीं सकता, नामुमकिन है, कुरान करीम का खुलासा नहीं हो सकता है। ये जो बयान किया जा रहा है इसी वजह से आप हज़रात ने इश्तिहार देखा होगा कि खुलासा है मज़ामीन है कुरान, कुरान करीम के जो मज़मून है ना उनका खुलासा कुछ बयान किया जा रहा है, कुरान करीम का खुलासा कोई कर नहीं सकता है। और इसका भी मकसद ये होना चाहिए कि ये मज़ामीन का खुलासा सुन के हमें शौक़ हो कि हम पूरा पढ़ें, ये मकसद होना चाहिए यहाँ बैठने का यहाँ सुनने का कि ये जो हम खुलासा खुलासा सुन रहे हैं ना तो इससे हमें शौक़ पैदा होना चाहिए कि अब तो हमें वक्त निकाल के पूरे कुरान करीम को क्या करना चाहिए, तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए। इसके बाद सूरह बकरा शुरू होती है, बकरा अरबी के अंदर गाय को कहते हैं, और इस सूरत का नाम सूरह बकरा इस वजह से नहीं है कि इसके अंदर ये बताया गया है कि गाय खाना हलाल है या हराम है, इस वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से कि बनी इसराइल का एक वाकया यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का बयान फरमाया गया है कि उनके ज़माने में एक शख्स ने अपने करीबी अजीज़ को कत्ल कर दिया और रात की तारीकी में उसकी लाश ले जाके किसी और के घर पर डाल दी और सुबह वावेला मचा रहा है कि मेरे फुला अजीज़ को फुला ने किसी ने कत्ल कर दिया या इसने कत्ल कर दिया। वो आदमी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था वो ऐसा था नहीं कि उस यकीन किया जाता, लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि भाई इस मामले को हल करें अल्लाह सुबहाना व तआला के हुक्म से उन्होंने बयान फरमाया कि गाय ज़बह कर ली जाए और उस गाय का जो गोश्त है वो इस मक़तूल के जिस्म पर लगाया जाएगा तो ये जिंदा होकर बता देगा कि उसको किसने कत्ल किया। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये क्या आप मजाक की बात कर रहे हैं, कोई बात है कोई गाय को ज़बह करें उसका गोश्त जिस्म पे लगाएं वो उठेगा, क्या किसी आप बातें कर रहे हैं। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा सख्ती से फरमाया तो अब एक और अंदाज उन्होंने शुरू कर दिया कि जी वो गाय कैसी होनी चाहिए, ऐसी हो तो उसका रंग कैसा हो, तो हमें तो जो है वो मिल नहीं रही अच्छा, इस तरह के जो है वो उल्टे सीधे सवाल करना शुरू किए। नतीजा ये निकला कि एक सीधी साधी गाय के ज़बह का हुक्म मिला था वो कर लेते जान छूट जाती, लेकिन उन्होंने सवाल कर करके अपने लिए क्या कर ली, मुश्किल पैदा कर दी। और फिर वो गाय बाज़ी रिवायत में मिलता है कि मिलती नहीं थी, इतनी सारी सिफात वाली इतनी सारी क्वालिटीज वाली गाय मिलती नहीं थी, एक साहब के पास मिली तो फिर उन्होंने बहुत बड़ी कीमत के साथ उसको कह किया बेचा। हालांकि कोई आम सी गाय भी ज़बह कर देते तो उनका काम चल जाता। बहरहाल क्योंकि इस सूरत के अंदर इसका तस्करा है इस वजह से उसकी तरफ निस्बत करते हुए इसको सूरह बकरा कहा जाता है। कुरान करीम की सूरतों के नाम इसी तरह से रखे जाते हैं कि किसी बड़े वाक़े या किसी बड़ी चीज़ का जिसमें तस्करा होता है तो उसके एतबार से नाम रख दिया जाता है। ये जो सूरत है ये बड़ी ही अहम सूरत है कुरान करीम की, सबसे लंबी सूरत है और मदनी सूरत है। ये जो कहा जाता है मक्की सूरत और मदनी सूरत, इसका मतलब ये नहीं होता कि मक्का में नाजिल होने वाली या मदीना में नाजिल होने वाली, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले जो सूरतें और जो आयात नाजिल हुई हैं वो मक्की हैं, चाहे वो मक्का में नाजिल ना हुई हो किसी और जगह नाजिल हुई हो। और जो हिजरत के बाद जो है सूरतें या आयात नाजिल हुई हैं वो मदनी सूरतें या मदनी आयात कहलाती हैं, अगरचे मदीना तय्यबा में नाजिल ना हुई हो किसी और जगह पे नाजिल हुई हो तो वो भी मदनी ही सूरतें या मदनी ही आयात कहलाती हैं। बहरहाल सूरह बकरा जो है ये मदनी सूरत है, हिजरत के बाद नाजिल हुई, इसका बड़ा हिस्सा जो है वो हिजरत के फौरी बाद नाजिल हुआ और कुछ हिस्सा जो है वो बिल्कुल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के करीब भी नाजिल हुआ, जैसे कि सूद से मुतालिक जो आयात हैं या आखिरी उम्र के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजिल हुई। इस सूरत के अंदर अल्लाह सुबहाना व तआला ने इब्तिदा में इंसान की तीन अकसाम बयान फरमाई है। सूरह बकरा जहाँ शुरू होती है वहीं से इंसानों की तीन किस्में बयान फरमाई है, एक खुले अल्लाह को मानने वाले, एक खुले अल्लाह का इनकार करने वाले और एक छुप कर अल्लाह का इनकार करने वाले और जाहिर में अल्लाह का इकरार करने वाले। जो खुला अल्लाह को मानते हैं वो मोमिन कहलाते हैं, जो खुले अल्लाह का इनकार करते हैं वो काफिर कहलाते हैं, और जो लोगों के सामने तो ईमान का इजहार करते हो और हकीकत में मुसलमान ना हो वो मुनाफिक कहलाते हैं। तो इब्तिदा के अंदर ये तीन अकसाम अल्लाह सुबहाना व तआला ने सूरह बकरा में बयान फरमाई है। फिर मोमिनों की अल्लाह सुबहाना व तआला ने पांच सिफात बयान फरमाई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं, वो युकीमूना सला, नमाज कायम करते हैं, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, जो हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं, ठीक है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर, वबिल आख़िरति हुम यूक़िनून, और आख़िरत पर यकीन रखते हैं। ये पाँच बुनियादी सिफात जो है वो यहाँ पर बयान फरमाई, इसका यह मतलब नहीं है कि इनके अलावा मोमिन की कोई सिफात नहीं होती है, यहाँ पर ये पांच सिफात बयान फरमाई है अल्लाह सुबहानहु व तआला ने। पहली सिफत जो बयान फरमाई कि गैब पर ईमान लाते हैं, गैब उस चीज़ को कहा जाता है जो अनदेखी हो, जो नजर ना आती हो, मिसाल के तौर पर हमारे लिए जो है वो हशर के मामला बगैर देखे हम यकीन रखते हैं कि हशर के अंदर उठाया जाएगा, जन्नत जहन्नम का मसला है, फरिश्तों का मामला है और अल्लाह सुबहानहु व तआला की ज़ाते आली है, नज़र नहीं आते लेकिन उन पर यकीन किया जाता है, इसको ईमान बिल गैब कहा जाता है। और नमाज कायम करने का मतलब क्या है, नमाज पढ़ लेना जिस तरह से हम पढ़ते हैं, नहीं जनाब ये नमाज पढ़ लेना तो है लेकिन नमाज कायम करने का मतलब जो है वो बयान फरमाया गया है कि उसको उसके मुकम्मल आदाब के साथ वक्त की पाबंदी के साथ, और बाज़ हज़रात ने फरमाया कि जमात के साथ, बाज़ हज़रात ने फरमाया कि दूसरों को भी इसके तरफ मुतवज्जे करना, ये सारी बातें मिल जाएं तो ये इकामत सलात कहलाता है, नमाज कायम करना कहलाता है। और इसके साथ जो है अल्लाह सुबहानहू तआला ने माली इबादत का जिक्र फरमाया, एक जिस्मानी इबादत है नमाज और एक माली इबादत है ज़कात, उसका तस्करा फरमाया है। और ज़कात जो है ये बड़ी अहमियत की चीज़ है और कुरान करीम में उमूमन नमाज और ज़कात का साथ साथ जिक्र आता है, जबकि हमारे यहाँ ज़कात को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, उसके मुकाबले में रोज़े को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, रोज़े की अपनी अहमियत से इनकार नहीं है, लेकिन कुरान करीम में जो है वो जहाँ जहाँ नमाज का तस्करा आया है उसके साथ ज़कात का तस्करा आया है। تیسری چوتھی جو صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ اللہ کے طرف سے نازل کردہ ہر چیز پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی یعنی قرآن کریم پر، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی یعنی تورات پر، زبور پر، زبور پر، انجیل پر اور دیگر تمام صحیفوں پر. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس کا تذکرہ نہیں ہے. آپ پر نازل ہونے کا تذکرہ ہے، آپ سے پہلے نازل ہونے کا تذکرہ ہے، آپ کے بعد نازل ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اسی وجہ سے یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ یہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں. اگر ہوتے تو اس کا بھی ذکر ہو جاتا کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے آپ پر بھی، آپ سے پہلے نازل ہونے والی چیزوں پر بھی، آپ کے بعد نازل ہونے والی چیزوں پر بھی. اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد مزید کچھ بھی نازل ہونے والا نہیں ہے، جو نازل ہونا تھا وہ ہو چکا، اس پر ایمان لاتے ہیں. یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم سب کے لیے ہدایت ہے، ہدل للناس. قرآن کریم نے خود اپنی یہ صفت بیان فرمائی کہ لوگوں کے لیے ہدایت، لیکن یہاں بیان فرمایا ہدل للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ قرآن کریم ویسے تو سبھی کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کا حقیقی فائدہ ان کو ہوگا جو ڈرتے ڈرتے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں گے. جو ڈرتے ڈرتے کیا کریں گے؟ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں. ڈرتے ڈرتے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اپنے مقاصد کے لیے نہیں استعمال کریں گے. جتنے فتنے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے، یعنی دین کے نام پر، قرآن کے نام پر جو فتنے پھیلتے ہیں ان میں سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کو اپنے نظریات کے تابع کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ایک نظریہ اپنا بنا لیا، اب میں قرآن میں اس کی دلیلیں ڈھونڈتا ہوں. تو میں نے اپنے نظریے کو قرآن کے تابع کیا یا قرآن کو اپنے نظریے کے تابع کر لیا؟ قرآن کو اپنے نظریے کے تابع کر لیا. یہ قرآن سے رہنمائی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ نظریے کی تائید میں قرآن پیش کیا جا رہا ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو اور پھر اپنا نظریہ بناؤ، جو قرآن سے سمجھ میں آئے اس پر کیا کرو، اپنے نظریے کی بنیاد رکھو کہ قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے. تو ہدل للمتقین کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے قرآن کریم ہدایت اور رہنمائی بنے گا جو ڈرتے ہوئے، تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، جو ڈرتے ہوئے قرآن کریم سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے، اور ان کو یہ خوف لگا ہوا ہوگا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم قرآن کریم کا غلط استعمال نہ کریں. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو آیات کافروں کے بارے میں نازل فرمائی ہے، ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کے بارے میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی ایمان کو نہیں قبول کرنا ہے، کفر کو چمٹا لیا ہے اپنے آپ سے. تو ان کے لیے تو پھر آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں برابر ہے. اچھا، یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کے حق میں برابر نہیں ہے. آپ نے اپنا کام کرنا ہے. کیا یہ آیت نازل ہونے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ چھوڑ دی، دعوت کا کام چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسا تو نہیں. یہ آیت تو نازل ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا، اس وجہ سے کہ یہ ان کے حق میں برابر تھا کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا کام کرتے رہنا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ کرتے رہنا ہے. اور پھر یہ جو ہم انذار کا ترجمہ کرتے ہیں نا، ڈرانا، یہ ہم اردو کے اعتبار سے کر دیتے ہیں کیونکہ اردو میں کوئی اور لفظ ہے نہیں ہمارے پاس، ورنہ یہ ڈرانا ایسا نہیں ہے جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ڈرانا ہے جو کسی سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے والد اپنے اولاد کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے ڈراتا نا، یہ ڈرانا مراد ہے. پیغمبر بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی امت سے محبت کے ساتھ ان کو کیا کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اور مراد وہی انذار ہے. اس کے بعد منافقوں کے بارے میں 13 آیات نازل ہوئی ہیں، پورا ایک رکوع تقریباً ہے، اور اس میں منافقوں کی 12 عادات بیان فرمائی ہیں. خوب غور سے ہم سن لیں اور اپنے بارے میں ذرا سوچتے رہیں کہ اللہ نہ کرے، کہیں ہمارے اندر تو یہ نہیں پائی جاتی. اگر پائی جاتی ہیں تو ہمیں इनसे बचना है, ये अमल की बात है। दोबारा तवज्जो दिला रहा हूँ बार बार। सबसे पहली सिफत झूठ बोलते हैं। सबसे पहली सिफत यहाँ पर मुनाफिकों की बयान फरमाइए, झूठ बोलते हैं। दूसरी सिफत बयान फरमाइए, धोखा देते हैं। तीसरी सिफत बयान फरमाइए कि समझ नहीं रखते, शऊर नहीं रखते। चौथी सिफत बयान फरमाइए कि इनके दिलों में बीमारियां हैं, दिल बीमार है इनके। दिल की बीमारी क्या होती है? एक जिस्म की बीमारी होती है, एक दिल की बीमारी होती है। जिस्म की बीमारी क्या होती है? बुखार है, हार्ट अटैक है, और क्या है, मुख्तलिफ जो है वो दांत में दर्द है, कान में दर्द है, ये जिस्म की बीमारी है। और दिल की बीमारियां क्या है? हसद है, हसद, जलन, दूसरे के पास नेमत नजर आ रही है, जलन हो रही है। दिल की बीमारी क्या है? अपने आप को दूसरों से बाला और बढ़तर समझना, तकब्बुर जिसको कहते हैं। दिल की बीमारी क्या है? किसी के साथ बुराई चाहना, कीना रखना दिल के अंदर। दिल की बीमारी क्या है? लालच है, पैसे के पीछे भागे चले जा रहे हैं, लालच है। ये सारी दिल की बीमारियां हैं। इससे पता चला कि कुरान करीम जो है वो इस बात को कबूल करता है कि दिलों का भी इलाज चाहिए। और ये जो अल्लाह वाले होते हैं, ये असल में दिलों ही का इलाज करते हैं। ये जो बीमारियां होती है ना, दिल की बीमारियां, इनका इलाज जो है वो अल्लाह वालों ही के पास मिलता है और कहीं नहीं मिलता। रिजालुल्लाह जिनको कहा है उनके पास ही मिलता है और कहीं इनका इलाज नहीं मिलता है। तो हमें जो है वो अल्लाह वालों की, अहलुल्लाह की तलाश हर वक्त जारी रखनी चाहिए, और जिसको मिल जाए उसको अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। पांचवी उनकी बीमारी बयान फरमाई है, धोखेबाजी, मकरो फरेब, चालबाजियां, मुंह पर कुछ और पीछे कुछ करके चालबाजियां करना। छठी सिफत बयान फरमाइए, बेवकूफी, अल्लाह ताला को धोखा देने की कोशिश किया, नहीं बेवकूफी और क्या है, अल्लाह ताला को तो कोई धोखा नहीं दे सकता, बेवकूफ लोग हैं। सातवीं सिफत बयान फरमाइए, अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाना। आठवीं सिफत बयान फरमाइए, जमीन में फितना और फसाद मचाना। नवीं सिफत बयान फरमाइए, उनकी जहालत। दसवीं सिफत बयान फरमाइए, गुमराही। और ग्यारहवीं सिफत फरमाइए, शक की कैफियत, तजब्जुब, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, अपने दीन पर मुकम्मल एतमाद ना होना। और बारहवीं सिफत बयान फरमाइए, ईमान वालों का मजाक उड़ाना। अब यकीनन ये सारी सिफात तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अंदर नहीं होगी, लेकिन हर एक अपने अपने बारे में सोचता रहे, कोई ना कोई बात उसके अंदर नजर आ रही होगी। तो करने का क्या काम है? करने का काम यही है कि अपने आप को उससे बचाया जाए, और रमजान इसके लिए बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है। रमजान के अंदर नेकियां करना आसान होता है, बुराइयों को छोड़ना आसान होता है। तो हम अपनी अपनी बुराइयों के बारे में सोचें कि मेरे अंदर ये बुराई पाई जाती है, और मैंने जो है वो इस तरह से प्लान करके अपने आप को अब रमजान के अंदर उस बुराई से जान छुड़ानी है। सूरह बकरा के तीसरे रुकू के अंदर अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम, ए ईमान वालों, ए लोगों, अपने रब की इबादत करो। इबादत किसे कहते हैं? उमूमन जब हम इबादत का लफ्ज बोलते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? नमाज, सबसे पहले नमाज हमारे जहन में आती है, रोजा हमारे जहन में आता है, ज़कात हमारे जहन में आती है, हज जहन में आती है, तिलावत जहन में आती है कुरान करीम की, ये सदका देना, खैरात करना, ये बातें हमारे जहन में आती हैं। लेकिन इबादत का जो लफ्जी मतलब है मुफसरीन के नज़दीक, वो ये है कि किसी की अजमत को सामने रखते हुए उसके अहकाम को मानना। किसी की अजमत को सामने रखते हुए, किसी की बड़ाई को सामने रखते हुए उसके अहकाम को मानना, यह इबादत है। अगर इस बात को ले लिया जाए तो फिर अल्लाह का हुक्म अगर नमाज की सूरत में माना जाए तो भी इबादत है, और तिजारत को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक कर लिया जाए तो वो भी इबादत है, मुलाजमत को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक कर लिया जाए तो वो भी इबादत है, घर वालों के साथ रहन सहन को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर लिया जाए तो वो भी इबादत है, दीगर लोगों के साथ अपने मामलात को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर लिया जाए तो वो भी इबादत है। सब इबादत है, सब इबादत है। तो इबादत का ये जामे मफहूम हमारे जहन में होना चाहिए, और हर मामले के अंदर, हर चीज के अंदर, अपने जिंदगी के हर शोबे के अंदर जो है वो हमें अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारी जिंदगी, पूरी जिंदगी क्या बन जाएगी? इबादत बन जाएगी। चाहे हम तिजारत कर रहे हो, चाहे हम मुलाजमत कर रहे हो, चाहे स्टडीज कर रहे हो, चाहे हम जो है क्या कहते हैं घर वालों के साथ हो, चाहे बाहर वालों के साथ हो, चाहे नमाज पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज क्या बन जाएगी? इबादत बन जाएगी। शर्त यह है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो और नीयत दुरुस्त हो, अल्लाह को राजी करने के लिए हो, तो वो इबादत बन जाएगी। इसके बाद कुरान करीम ने चैलेंज दिया है उन लोगों को जो अपने आप को बड़ा ही कादिरुल कलाम, बड़े जबरदस्त बोलने वाले समझते थे अरब, और बाकी पूरी दुनिया को अजम कहते थे, गूंगा कहते थे, उनको चैलेंज दिया है कुरान करीम ने कि अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि ये कुरान करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बना लिया है अपनी तरफ से, तो तुम्हें भी अरबी आती है, तुम भी बना के ले आओ, कोई एक सूरत बना के ले आओ, 10 सूरतें बना के ले आओ, कोई आयात बना के ले आओ, कुछ तो करके ले आओ। ये खुला चैलेंज है। आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन लोगों ने, लेकिन इस चैलेंज को कबूल नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। कुछ लोगों ने कोशिश की भी और खुद ही मजाक बन गया। एक साहब ने जो है कोशिश की और सबसे अलग थलग जो है वो एक खेमे के अंदर घुस गए कि मैं इसके मुकाबले की सूरत लेते आऊंगा। कई दिनों के बाद बाहर निकले और कहा कि जो है वो मैंने जो है वो एक सूरत तैयार कर ली है। लोगों ने कहा अच्छा सुनाओ क्या सूरत तैयार की है। कहने लगे मैंने सूरत तैयार की है अल-फील मल-फील वमा अदराक मल-फील लहू खुर्तूमुन तवील वज़नबुन कसीर। कहने लगे कि मैंने ये सूरत तैयार की है, इसका मतलब ये कि हाथी, तुम्हें पता है हाथी किसे कहते हैं? हाथी कहते हैं उसको जिसकी लंबी सी सूंड होती है और छोटी सी दुम होती है। लोगों ने कहा भाई पागल हो गए हो क्या, दिमाग तो सही है तुम्हारा, किसको नहीं पता हाथी किसको कहते हैं? सबको पता है हाथी किसको कहते हैं। ये तुमने क्या किया इतने दिन तक बिना वजह जो है वक्त जाया किया और ये बना के लाया। वो असल में अल-क़ारिआ मल-क़ारिआ वमा अदराक मल-क़ारिआ के की तरह की चीज लेके आया था कि मैं भी इसी तरह की जो है वो सूरत बना के लाया। अल-क़ारिआ मल-क़ारिआ के अंदर क़यामत की बात की जा रही है और उसका अलग ही चीज है, अल-हाक़्क़ा वल-हाक़्क़ा अलग ही चीज है, और कहां अल-फ़ील मल-फ़ील वमा अदराक मल-फ़ील। तो लोगों ने कहा भाई जाओ अपना काम करो, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सका। ये अल्लाह सुबहाना व तआला की तरफ से चैलेंज है, मौजजा है, और मौजजा जो है वो अल्लाह सुबहाना व तआला हर जमाने की जरूरत के मुताबिक भेजते हैं। जिस जमाने की जैसी जरूरत होती है, जिस चीज का चर्चा होता है, उसके मुताबिक अल्लाह सुबहाना व तआला मौजजात भेजते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू का बड़ा चर्चा था, अल्लाह सुबहाना व तआला ने उनको मौजजा दिया कि लाठी फेंकी और सांप बन गया और सारे जादूगरों के तमाशे को खा लिया, ठीक है, जादू का इब्तिदा हो गया, खत्म कर दिया जादू को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मेडिकल बहुत उरूज पर थी, लेकिन मौत का इलाज किसी के पास नहीं था, बर्स का इलाज किसी के पास नहीं था, नाबीना पैदाइशी नाबीना का कोई इलाज किसी के पास नहीं था। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता फरमाया, उनके पास अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इन चीज़ों का इलाज भी दिया, मौत का भी इलाज दिया। कुम बिज़िल्लाह फरमाते थे, मुर्दा खड़ा हो जाता था अल्लाह के हुक्म से। तो उस जमाने के अतबार से ये मौजज़ा दिया। कुरान करीम जो है ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है जो क़यामत तक के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात मुख्तलिफ किस्म के हैं, कुछ जो है वो जिस्मानी ज़ाहिरी मौजज़ात थे और एक इल्मी मौजज़ा है। जिस्मानी और ज़ाहिरी मौजज़ात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुनिया से चले गए, लेकिन ये इल्मी मौजज़ा जो है वो क़यामत तक के लिए अल्लाह सुबहानहु व तआला ने मौजूद रखा हुआ है। इसके बाद जो सूर अगली आयात है इनके अंदर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया कि الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه, अल्लाह से वादा करने के बाद जो लोग, अल्लाह से अहद करने के बाद जो लोग अहद को तोड़ देते हैं, ويقطعون ما امر الله به ان يوصل, और जिनसे रिश्तेदारी कायम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया उनसे रिश्तेदारी तोड़ते हैं, ويفسدون في الارض, जमीन में फसाद मचाते हैं, اولئك هم الخاسرون, ये खसारे वाले हैं, ये नुकसान वाले हैं। इस आयत के इंतखाब की वजह यही है कि हम अपना जायजा ले लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिश्तेदारियों के मामले में गड़बड़ करते हों, खूनी रिश्तों का एहतराम ना करते हों, उनका ख्याल ना रखते हों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह से वादे करते हों और फिर उसको तोड़ देते हों। अगर ऐसा है तो हम अपना जायजा लें और अपने मामलात को दुरुस्त करें। इसके बाद चौथे रुकू के अंदर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उस पैदाइश के वजूहात को बयान फरमाया है कि क्यों इंसान को दुनिया में भेजा। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने दुनिया में इंसान को अपना नायब और खलीफा बना के भेजा है, और खलीफा का काम क्या होता है? वही जो असल का काम होता है, जो अल्लाह के अहकामात हैं वो दुनिया में नाफिज करने के लिए इंसान को दुनिया में भेजा है। कितना बड़ा एहसास है, कितना बड़ा एहसास है। यहाँ आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वजीर आजम साहब जो हैं वो बाहर जाते हैं और कायम मकाम वजीर आजम जिसको बनाया जाता है वो अपने लिए कितना बड़ा एहसास समझता है, कि बहुत बड़ा एहसास मिल गया, या गवर्नर जो है कहीं जा रहे हो तो कायम मकाम गवर्नर जो होते हैं वो अपने लिए उसको बड़ा एजाज समझते हैं। हालांकि ये सारा क्या होता है, आरजी होता है, और जिनकी तरफ से मिल रहा होता है वो भी उनके पास भी आरजी होता है। जबकि अल्लाह सुबहाना व तआला का नाइब होना, खलीफा होना कितना बड़ा एजाज है जो हर इंसान को मिला हुआ है। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो इस एजाज की कदर करता है या नहीं करता, इसका हक अदा करता है या नहीं करता। तो मैं आप अपने आप अपने बारे में सोचें कि हम किस हद तक इस एजाज का ख्याल कर रहे हैं और किस हद तक जो है वो इस एजाज की कदर कर रहे हैं। यकीनन हमारी तरफ से इसके अंदर कोताही है और हमें इस पर ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत है कि हम जो है वो अल्लाह सुबहानहु व तआला के नाइब की और खलीफा की हैसियत को दोबारा से रिव्यू करें और अपने अंदर पैदा करें। इसी तरह से यहाँ ये भी पता चल जाता है हमें इन आयात के अंदर के इंसान और शैतान की लड़ाई जो है ये अजल से जारी है और अबद तक रहेगी, दायमी कश्मकश है। इंसान जो है उसको अल्लाह सुबहानहु ताला ने कामयाब करना है और शैतान जो है वो इस इंसान को नाकाम करना चाहता है, और इंसान की नाकामी यही है कि वो शैतान की बात मान ले और रहमान की बात को छोड़ दे। ये पूरी जिंदगी की लड़ाई है, ये कोई एक घंटे की या दो दिन की या दो चार दिन की या दो महीनों की लड़ाई नहीं है। और दुनिया के अंदर जो जंगें लड़ी जाती हैं वो एक वक्त तक के लिए होती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं, फिर अमन और सुलह की बातें होने लगती हैं। इंसान और शैतान की कभी सुलह नहीं हो सकती, एक ही सूरत हो सकती है कि इंसान क्या कर ले, शैतान की बात मान ले, तब तो उसकी दोस्ती हो जाएगी। अगर शैतान की बात नहीं मानता, रहमान की बात मानता, तो शैतान ने कभी भी इंसान से दोस्ती नहीं करनी है और मरते दम तक ये लड़ाई जारी रहनी है। तो हम जो है वो इस लड़ाई के लिए तैयार हैं कि ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने शैतान की बात मान ली तो अल्लाह के यहाँ फिर हम नाकाम हो जाएंगे। तो इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहानहू व तआला ने सबसे अजीम मर्तबा अता फरमाया और उसकी वजह यह बयान फरमाई, इल्म की वजह से अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जो है उनको ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। तो इल्म की तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है, और हकीकी इल्म जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का इल्म है। जिसको ये इल्म हासिल है तो उसको हकीकी इल्म हासिल है, जिसको ये इल्म हासिल नहीं है तो चाहे दुनिया जहान का इल्म उसके पास हो वो फिर उसको हकीकी इल्म हासिल नहीं है। इसके बाद बनी इसराइल का तज़किरा होता है। बनी इसराइल लफ्जी मतलब है इसराइल की औलाद, और मुराद जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं, बल्कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम इब्रानी में इसराइल भी है, जिसका मतलब होता है अल्लाह का बंदा, ईल का बंदा, इसराइल अल्लाह का बंदा। और बनी इसराइल का मतलब हुआ इसराइल की औलाद, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी पैगंबर दुनिया में आए हैं वो उनकी औलाद में हैं, या इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में जो याकूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से है, और ये सारे के सारे पैगंबर जो है बनी इसराइल के पैगंबर कहलाते हैं। कुरान करीम के अंदर बनी इसराइल का बड़ा तफसील से जिक्र है, और सबसे लंबा और तफसीली जिक्र जो है वो इस पहले पारे के अंदर है कुरान करीम के। इसके अंदर बनी इसराइल के ऊपर किए जाने वाले इनामात का भी अल्लाह ने तस्करा फरमाया कि क्या क्या इनामात अल्लाह ताला ने उनके ऊपर किए, और उनका जवाबन तर्ज अमल भी जिक्र किया कि उन्होंने इन इनामात की कोई कदर नहीं की बल्कि अल्लाह ताला की नाशुक्री की, और जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अजाब भी आए। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने यहाँ बनी इसराइल को चंद अहकाम दिए। पहला हुक्म ये कि मेरी नियामतों को याद करो। ये हमें याद रखना चाहिए कि कुरान करीम कोई किस्से कहानी की किताब नहीं है। जैसे होते हैं ना किस्से कहानियों की किताब होती है, जो किस्से कहानियों की किताब होती है उसके अंदर किस्से पूरे तरतीब से बयान किए जाते हैं, जो बात पहले हुई होती है उसको पहले जिक्र किया जाता है, जो बाद में हुई होती है उसको बाद में जिक्र किया जाता है। कुरान करीम किस्से कहानियों की किताब नहीं है। कुरान करीम में इस तरह से तरतीब का ख्याल नहीं रखा गया, कुछ चीज़ें जो पहले हुई हैं वो बाद में जिक्र हुई हैं, जो बाद में हुई हैं वो पहले जिक्र हो गई हैं, यहाँ तक कि एक ही वाक़े को जो है टुकड़े टुकड़े करके कुरान करीम में मुख्तलिफ जगहों पर बयान फरमाया गया है। वजह उसकी ये कि कुरान करीम गौर व फिक्र और नसीहत की किताब है, सबक हासिल करने के लिए। تو قرآن کریم کسی بھی واقعے کا صرف اتنا حصہ ذکر کرتا ہے جس سے کوئی سبق ملتا ہے، جس سے کوئی نصیحت ملتی ہے. تو یہاں بھی بنی اسرائیل کو جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ شکر کی کیفیت پیدا ہوگی جو مطلوب ہے، جو مطلوب ہے. شیطان نے کیا کہا کہ میں جو ہے وہ کیا کروں گا، آپ کے بندوں کو ہر طرف سے آ کے بہکاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر آپ کو شکر کرنے والے نہیں ملیں گے. یعنی شکر کرنے والے صرف وہ ہوں گے جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے. اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے انسان کو کس چیز کی توفیق ملتی ہے؟ شکر کی توفیق ملتی ہے. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. دوسری بات بیان فرمائی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي بِعَهْدِكُمْ، تم میرے مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا. کمی ہماری طرف سے، اگر ہمیں اللہ کی نعمتیں نہیں مل رہی ہیں یا اللہ کی طرف سے مدد نہیں مل رہی ہے تو کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کر رہے. تیسری بات یہ بیان فرمائی، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے کیا کرو، ڈرو. اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بیان فرمائے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ، جو میں نے نازل کیا ہے اس پر کیا کرو، ایمان لاؤ. اور فرمایا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مت ملاؤ. اور فرمایا، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو جو ہے وہ چھپاؤ نہیں. اور فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ نماز قائم کرو. یہ تمام احکامات جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہیں، ہمیں بھی جو ہے وہ ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل پر آنے والے انعامات میں سے ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ بادلوں کا سایہ فرمایا ان کے اوپر. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صحرا کے اندر جو ہے وہ چکر کاٹنے پہ لگا دیا. اب اس صحرا کے اندر ہیں اور بالکل کھلی، کوئی چھت ان کے اوپر نہیں ہے، کوئی سائبان نہیں ہے، دھوپ سے پریشان ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دوران نعمت فرمائی کہ بادلوں کا سایہ ان کے اوپر فرما دیا. کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی تو من و سلوا ان کے لیے نازل فرما دیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ناشکری. بڑی بدتمیز قوم ہے یہود جو ہے وہ، بڑی بدتمیز قوم ہے، بڑی ناشکری قوم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سارے انعامات فرمائے لیکن جواب میں انہوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو من و سلوا عطا فرمایا تو کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں تو جو ہے وہ پیاز کھانی ہے، ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے، سبزیاں کھانی ہیں. یعنی اچھی چیز کے بدلے میں کمزور چیز لینے کے لیے تیار ہو گئے، جو دلالت کرتا ہے اس بات پہ کہ عقل نہیں تھی. اگر عقل ہوتی تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز کو کیا کرتے؟ قبول کرتے. البتہ اس کے اندر ایک اشارہ ضرور ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ایک چیز پر نہیں ٹھہر سکتا، وہ ہر وقت جو ہے وہ نئے کی تلاش میں رہتا ہے. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نئے کی تلاش میں انسان رہتا ہے، یہ کسی حد تک اس کے لیے فطری ہے، فطری بھی ہے اس کے لیے. البتہ اللہ کی نعمتوں کی بہرحال قدر کرنی چاہیے اور ان کی ناقدری جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا. یعنی ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا تو ان کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا گیا کہ یا تو مانو یا یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے. پھر انہوں نے مان لیا. یہاں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ہمارے یہاں عام لفظ بولا جاتا ہے، ایک عام جملہ بولا جاتا ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے. سنا ہوگا آپ نے بھی کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے. کیا خیال ہے دین کے احکامات میں سے جہاد ہے یا نہیں ہے؟ جہاد دین کے احکامات میں سے آسان کام ہے، مشکل کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. تو سختی تو ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ دین قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے. جس نے کرنا ہے کرے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس نے ایمان لانا ہے ایمان لائے، جس نے کفر کرنا ہے کفر کرے. کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں. لیکن جب دین قبول کر لیا، مان لیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اب اللہ کی نہیں مانتے کا آپشن نہیں ہے، اب اللہ کی نہیں مانتے کا آپشن نہیں ہے. اب سختی بھی کی جائے گی، اب عمل نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ سختی بھی کی جائے گی. یہی صورتحال یہاں پر بھی تھی بنی اسرائیل کے ساتھ کہ مان لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا ہے، اب چند چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. جب انکار کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کر دیا؟ पहाड़ को ऊपर खड़ा कर दिया कि तस्लीम करते हो या नहीं, सीधे चलते हो या नहीं चलते हो। तो ये गलतफहमी हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि दीन के अंदर सख्ती नहीं है। जो लोग इस तरह से कहते हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं। और फिर सूरह बकरा के नाम से जो वाकया है उसका तذکرہ है, और बेजा सवालात को जो है वो पसंद नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह करीह लकुम कसरत सवाल, अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सवालात को पसंद नहीं फरमाते, और फरमाया कि कील और काल से मना फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बदतरीन शख्स वो है कि जिसके सवालात की वजह से कोई चीज हराम कर दी गई, कोई मुश्किल हुक्म नाजिल कर दिया गया। तो सवालात जरूर किए जाएं, लेकिन ऐसे नहीं कि जिनकी वजह से लोगों के लिए परेशानियां पैदा हो। कुरान करीम में सूरह मायदा में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशयाइन तुबदलकुम तसुअकुम, ए लोगों उन चीजों के बारे में सवाल नहीं करो कि अगर तुम्हारे सामने बयान की जाए तो फिर तुम्हें बुरी लगेंगी, फिर बुरी लगेंगी। तो अगर दीन का कोई सीधा साधा हुक्म हमारे सामने आए तो सीधा साधा उस पर अमल कर लेना चाहिए। ज्यादा खोद कुरेद जो है वो बाज़ोकात क्या होती है, परेशानी का सबब बनती है। इसके बाद मुनाफिकों की एक सिफत ये बयान फरमाई है कि जब मुसलमानों के सामने होते हैं तो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और जब अपने सरदारों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि जी हम तो वैसे ही मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं। दो रुखी, दोगलापन, ये दोगलापन जो है ये मुनाफिकों की सिफत है, मुसलमान की सिफत नहीं है। और आजकल इसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है वो यही है, दोगलापन है, कहना कुछ और करना कुछ, आवाम की हुकूमत के नाम पर आवाम के साथ ज्यादती। और ये तो मास लेवल पे बात हो रही है, और हम इंफरादी तौर पे भी बड़ी हद तक इसका शिकार होते हैं कि लोगों को जो है वो जाहिर कुछ करते हैं और हम हकीकत में कुछ और कर रहे होते हैं। तो ये दोगलापन है जो एक मुसलमान की सिफत नहीं है, ये मुनाफिक की सिफत है, इससे अपने आप को जो है वो बचाना चाहिए। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों का एक दावा, वकालु लन तमसना नारु इल्ला अय्याम मादूदा, कहते हैं कि जहन्नम की आग हमें चंद ही दिन के लिए छुएगी। एक तो पहले तो हम जहन्नम में जाएंगे नहीं, ना हनु अबना अल्लाह वाहिबाव, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, हम तो अल्लाह के बड़े पसंदीदा हैं, अपने आप को कुछ समझना। और फिर ये कि अगर खुदा ना खास्ता चले भी गए तो ज्यादा जो है वो बस थोड़े ही दिनों के लिए जाएंगे। गोया कि दीन के जन्नत के हम ठेकेदार हैं, जन्नत के हम क्या हैं, ठेकेदार हैं। और अल्लाह बचाए कि हम भी कुछ ऐसे ही हैं, जन्नत के हम भी कुछ ठेकेदार बन गए कि हम ही जो है वो क्या है, पक्के थक्के जो है वो क्या है, जन्नती हैं। तो किसी के भी बारे में ये कहना कि पक्का ठक्का जन्नती है ये मुमकिन नहीं है किसी के लिए, सिवाय के रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान, सहाबा किराम के बारे में कुरान करीम ने फरमा दिया। बाकी किसी शख्स के लिए यकीनी तौर पे ये कहना मुश्किल है कि वो जन्नती है। बहरहाल जन्नत का ठेकेदार बनना जो है ये मुनाफिकों की सिफत है और यहूदियों की सिफत है, यहूदियों की और ईसाइयों की सिफत है, मुसलमानों की सिफत नहीं है। हमें अपने आप को इससे बचाना चाहिए। आयत नंबर 83 के अंदर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने बनी इसराइल से एक और अहद का तस्करा फरमाया है जो हमारे लिए भी है। وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, وَذِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, وَالْمَسَاكِينِ, مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھے انداز سے گفتگو کرنا, واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے رمضان کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ کون سی بری صفات ہم نے چھوڑنی ہے, کون سی اچھی صفات ہم نے اپنانی ہے۔ تو اچھی صفات یہ قرآن کریم کے اندر بیان کردہ صفات ہیں جن کو ہم اپنے عمل کے اندر جو ہے وہ لاتے جائیں تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ بنتا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ایک یہ خرابی بیان فرمائی ہے کہ وہ بچھڑے کی عبادت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے حکم پر طور کی طرف تشریف لے گئے, پیچھے انہوں نے جو ہے وہ بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ انتہائی قسم کے بیوقوف لوگ تھے, یعنی اللہ کو سمجھنے کے بعد, ماننے کے بعد پھر جو ہے وہ گائے کی اور بیل کی پوجا کرنا شروع کر دی, تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, آپ ان کو زندگی کا بڑا ہی لالچی پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, مشرک لوگ جو ہیں, يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, ان میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہزار سال کی عمر مل جائے, ہزار سال کی عمر مل جائے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر, لمبی عمر ملنے سے عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں ملنے والا. اس سے پتہ چلا کہ میری لمبی عمر جو ہے یہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہزار سال جیو, جیتے رہو, دعا دی جاتی ہے ہمارے یہاں لمبی عمر کی, کیا کی جاتی ہے, دعائیں کی جاتی ہیں. خالی لمبی عمر جو ہے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. ہاں وہ لمبی عمر اللہ کی نعمت ہے جو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ہو. لمبی عمر بھی اچھی ہے, چھوٹی عمر بھی اچھی ہے, مختصر عمر بھی اچھی ہے. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو تو پھر چاہے ہزار سال کی عمر ہو عذاب سے چھٹکارا نہیں ہوگا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری والی ہے یا نافرمانی والی ہے. اگر اللہ کی فرما برداری والی ہے اللہ کا شکر ادا کیا جائے, مزید کی توفیق مانگی جائے, اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانی والی ہے تو رمضان کے اندر توبہ کر لی جائے. اس کے بعد یہ ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ جادو کے بڑے شوقین تھے, جادو ان کو بہت اٹریکٹ کرتا تھا. ہمارے زمانے میں بھی کچھ یہی صورتحال ہونے لگی ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. چونکہ عقیدہ کمزور ہو گیا ہے, اس بات پر یقین کمزور ہو گیا ہے کہ نفع ہو یا نقصان کرنے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے, اس وجہ سے ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ رجحان بڑھ گیا. جب یہ عقیدہ پکا ہو کہ لو اجتمعت الدنیا علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا ما قد كتب الله لك, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساری دنیا اگر جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ دے دے, ہرگز فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس فائدے کے جو پہلے سے لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے یہاں. ولو اجتمعت الدنیا علی ان يضروک بشیء لم يضروک الا ما قد كتب الله لك, وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری دنیا جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان دے دے, نہیں دے سکتی سوائے اس نقصان کے جو پہلے سے اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے. جو اللہ کے یہاں پہلے سے لکھا ہوا وہی نقصان ہو سکتا ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو جادو کی طرف تو وہ جائے گا کہ جو کوئی ایسا نقصان پہنچانا چاہتا ہے جو اللہ نے نہیں لکھا, جو ممکن نہیں ہے. یا اس کے پیچھے وہ پڑے گا کہ جس کو اللہ کے اوپر پکا یقین نہیں ہے, پکا بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ذات پر. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک آیت کریمہ اسی زمن میں, لا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا, اے ایمان والو راعینا مت کہو. یہ اصل میں راعی عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں, تو یہودی جو ہیں, اور راعی کا ایک اور مطلب آتا ہے ہمارا خیال کیجئے, جو منافق لوگ تھے وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہتے تھے راعینا. اب اس کا ایک مطلب تو یہ کہ ہمارا خیال کیجئے, اور اگر تھوڑا سا خدا نہ خواستہ اس کو کھینچ کے پڑھا جائے راعینا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا. یہ جلدی سے تیزی سے بولتے تھے, اپنے دل میں یہ ارادہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور مسلمانوں پہ یہ تاثر دیتے تھے کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارا خیال کیجئے. چند مسلمانوں نے دیکھ کر کہ یہ بڑا اچھا لفظ ہے ہمارا خیال کیجئے, انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تم ایسا مت کرو. جس لفظ کے اندر یہ اندیشہ بھی ہے کہ اس میں بدتمیزی ہو سکتی ہے, وہ لفظ بھی مت استعمال کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آداب کچھ ایسے ہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آداب کچھ ایسے ہی ہیں. فارسی کے اندر ایک شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, خدا کے ساتھ پاگل ہونا ہے پاگل ہو جاؤ تم, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے مانگنا ہے مانگ لو, لیکن محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جب معاملہ ہے تو ہوشیار ہو جاؤ. یہاں ذرا سی بھی بدتمیزی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, بعض اوقات ایمان سے ہاتھ دھونے کا سبب بن جائے گی. تو بڑے ہی کیا رہو, ہوشیار رہو. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, وہ شخص جو اسلام لایا اور اپنے رخ کو اللہ کی طرف کر لیا اور نیکی کے راستے پر چلا, فلہ اجر عند ربی, اس کا اجر جو ہے وہ اس کے رب کے پاس ہے. یہ دو باتیں بیان فرمائی ہیں, ایک یہ کہ خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو کر لینا, اور دوسرا یہ کہ احسان. اس کو حضرات صوفیہ کرام کے زبان میں کہتے ہیں صدق اور اخلاص. صدق کا مطلب ہوتا ہے صحیح راستہ, سچا راستہ, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. کامیابی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, جب تک یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی کامیابی نہیں ہوگی. نیت بہت اچھی ہے, بہت زبردست نیت ہے, راستہ ٹھیک نہیں ہے کامیاب نہیں ہو سکتے. راستہ بالکل ٹھیک ہے لیکن نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी के लिए दो दो चीजें जरूरी हैं, नियत दुरुस्त होना भी जरूरी है और रास्ता ठीक होना भी जरूरी है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। इसके बाद फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों से लोगों को रोके। अल्लाह की मस्जिद से रोकने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, हमारे जमाने में या हमारे मुल्क में ये सूरत तो नहीं है कि कोई जो है वो क्या करे, मस्जिद का दरवाजा बंद कर दे और लोगों को मस्जिद से रोके, सबके लिए दरवाजा खुला है। लेकिन कुछ हमारी हरकतें बाज़ोकात ऐसी होती हैं जो लोगों को मस्जिद से रोकने का सबब बन जाती है। उसमें से एक हरकत यह है कि फिरकावारियत, कई लोग ऐसे हैं पर्सनली जानता हूँ कि जो मस्जिद में जमात से नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ इस वजह से कि ये फुलां उसको बुरा कहता है, फुलां उसको बुरा कहता है, मैं ना इसके पीछे पढ़ता हूँ उसके पीछे पढ़ता हूँ, वो घर में नमाज पढ़ रहा है। सबब कौन बना? वो बुरा बना कहने वाले सबब बना है, उसके दिमाग में भी नहीं, वो समझ रहे मैं बड़ी दीन की खिदमत कर रहा हूँ, मैं बड़ी क्या कर रहा हूँ, दीन की खिदमत कर रहा हूँ। वो दीन की खिदमत कहाँ कर रहे हैं भाई, अल्लाह के बंदे लोगों को मस्जिद से रोक दिया। दीन की खिदमत तो ये कि लोग मस्जिद से जुड़ जाएं, जितना मस्जिद से ताल्लुक लोगों का मजबूत होगा उतना दीन से ताल्लुक मजबूत होगा, जितना मस्जिद से ताल्लुक कमजोर होगा उतना दीन से कमजोर होगा। तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता हमारे किसी अमल से लोग कहीं मस्जिद से तो नहीं कट रहे, अगर मस्जिद से कटेंगे हमारे किसी अमल से तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। आप कुरान करीम अल्लाह सुभान व तआला फरमा रहे वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह यज़कर फीहा इस्मुहु और वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, तो उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों से जो है वो लोगों को रोकने का सबब बने। यहूदियों और ईसाइयों के बारे में कुरान करीम में सूरह बकरा में अल्लाह सुभान व तआला फरमा रहे वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहूद ईसाई तुमसे कभी राजी नहीं होंगे जब तक तुम उनके दीन की पैरवी ना करो, जब तक तुम उनकी मिल्लत की पैरवी ना करो। तो जो लोग आज भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से अमरीका को राजी कर लें, किसी तरह से जो है वो इसराइल को खुश कर लें, सुन लें अल्लाह सुभान व तआला फरमा रहे हैं कि वो तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक के तुम उनकी ही मिल्लत और उन्हीं के दीन के मुताबिक ना चलने लगो, तब तक वो तुमसे राजी नहीं होंगे। तो ये बेकार की कोशिशों में लगे हुए हैं, आधा तीतर आधा बटेर करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ मुसलमान भी रहें और उनको भी राजी कर लें, ऐसा करना जो है वो मुमकिन नहीं है। हाँ, बराबरी की बुनियाद पर उनसे मामलात से कुरान करीम मना नहीं फरमाता, उनसे मामलात किए जा सकते हैं, लेन देन की जा सकती है, खरीदो फरक किए जा सकते हैं, मुआहदात किए जा सकते हैं, सब किए जा सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किए हैं, ठीक है। लेकिन उनको खुश करने की कोशिश करना जो है ये बेवकूफ़ाना कोशिश है, वो कभी भी हमसे खुश नहीं हो सकते। उसके बाद अल्लाह सुभान व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा फरमाया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं और अबुल अंबिया कहलाते हैं, तमाम पैगंबरों के वालिद कहलाते हैं। उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी सरासर जो है वो कुर्बानी ही कुर्बानी है, अल्लाह ताला के अहकाम के ऊपर बड़े बड़े मुश्किल फैसले उन्होंने लिए और उस पर फिर कायम रहे। इसी वजह से अल्लाह सुभान व तआला ने उनको खलीलुल्लाह फरमाया, अपना खास दोस्त फरमाया अल्लाह सुभान व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। बिल्कुल इब्तिदा के अंदर आप देखते हैं कि उस माशरे के अंदर जहाँ घरों के अंदर बुत बन रहे हैं वहाँ बुत परस्ती की मुखालफत करना, फिर जो है वो अल्लाह के हुक्म पर जो है वो जाबिर वक्त से बादशाह से टकरा जाना, फिर जो है वो औलाद को बीवी को एक ऐसी जगह पे छोड़ देना जहाँ जिंदगी के कोई आसार नहीं है अल्लाह के हुक्म पर, फिर जो है वो औलाद को ज़बह करने पे तैयार हो जाना, राजी हो जाना, ये सारे फैसले जो है वो इंतहाई कुर्बानी वाले फैसले हैं और हमें सबक देते हैं कि अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी पसंदीदा चीज़ों को कुर्बान करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ये सबक है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े का। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो शख्सियत है जिसको यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, सब मानते हैं और हर एक उनको अपना बताता है और हर एक ये कहता है कि हम जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। तो कुरान करीम सूरह बकरा के पहले पारे के आखिर में ये फरमाता है कि अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत ववस्सा बिहा इब्राहिम बनी व याकूब। दीन की वसीयत जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई है और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई है। और याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी फरमाया कि उन्होंने अपनी औलाद से अपनी मौत के वक्त ये पूछा कि मेरे बाद क्या करोगे, मेरे बाद क्या करोगे, किसकी इबादत करोगे। इससे पता चला कि मौत के वक्त जो सबसे अहम और कीमती बात जिसकी फिक्र होनी चाहिए वो क्या है, किसकी इबादत करोगे, तुम्हारी आखिरत का क्या बनेगा। और आज हम मादियत के दौर में हमारी सबसे अहम फिक्र क्या होती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा, इसका क्या मतलब होता है, दुनिया के एतबार से क्या बनेगा, आखिरत की कोई फिक्र हमारे दिमाग में नहीं होती है। तो इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि पैगंबरों का अंदाज ये है कि वो क्या करते हैं, अल्लाह वालों का अंदाज ये है कि वो अपनी औलाद के लिए इस हवाले से फिक्रमंद होते हैं कि आखिरत में उनका क्या बनेगा। दुनिया तो किसी भी तरह से गुजर ही जानी है, कुछ नहीं पता कितने अरसे के लिए दुनिया में हम हैं, ये तो गुजर ही जानी है, लेकिन आखिरत के एतबार से और अमल के एतबार से, अकीदे के एतबार से हमें जो है वो क्या होना चाहिए, फिक्रमंद होना चाहिए और अपनी औलाद की फिक्र करनी चाहिए। इस पर इसके बाद जो है वो आखिर में फरमाया सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, ये दीन जो है वो अल्लाह का रंग है। जब किसी के ऊपर चढ़ जाता है ना तो फिर पूरी तरह से उसके हर हर अमल से जाहिर होता है कि ये दीनदार है, उसकी मईशत से भी जाहिर होता है, उसकी माशरत से भी जाहिर होता है, उसके अखलाक से भी जाहिर होता है, उसके रहन सहन से भी जाहिर होता है, पता चलता है उसके हर अमल से कि ये दीनदार है। सिर्फ नमाज रोजा नहीं, फिर हर चीज के अंदर उसकी दीनदारी क्या होती है, नजर आती है, अल्लाह का रंग उसके ऊपर क्या होता है, दीन का रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। और उसका मैयार क्या है, फैना मनु बिमिथलि मा अमंतु बिही फकद हिदा, अगर ये लोग ईमान लाए वैसा जैसा कि सहाबा इकराम ईमान लाए तो हिदायत पर है, वरना जो है वो क्या है, गुमराही पर है। इस पर पहले पारे का इख्तिताम होता है। दूसरे पारे के आगाज के अंदर जो है वो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने तहवील क़िबला, क़िबले का के बदलने का तस्करा फरमाया है कि इब्तिदा में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा तशरीफ ले गए तो 15-16 महीने जो है वो बैतुल मक़दिस की तरफ रुख कर नमाज पढ़ते रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद दिली ख्वाहिश थी कि बैतुल्लाह को जो है वो क़िबला करार दिया जाए। कुरान करीम में अल्लाह सुबहानहु व तआला ने वो हुक्म नाजिल फरमा दिया और साथ में ये भी फरमा दिया कि कुछ लोग इस पर एतराज करेंगे कि ये क्या है, ये कैसा दीन है कि जिसका क़िबला भी बदलता रहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया गया कि आप फरमा दीजिए कि वलिकुल्ल वजहदुन हुवा मुवल्लिया, हर एक अपने अपना रुख किया हुआ है। असल में यह है कि अइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ भी रुख करो अल्लाह ही अल्लाह है। तो जो क़िबले की तरफ रुख किया जाता है वो इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला वहां खड़े हुए, ये कोई बुत की तरह नहीं है कि अल्लाह ताला वहां खड़े हुए, अल्लाह ताला तो हर तरफ है। क़िबले की तरफ जो रुख किया जाता है वो तो सिर्फ इस वजह से किया जाता है के तवज्जो मरकूज हो जाए। इंसान की फितरत यह है कि वो तवज्जो के लिए कोई ना कोई चीज चाहता है, इस वजह से उस तरफ रुको, और एक यकसानियत हो कि सब लोगों का किबला एक तरफ हो, इस वजह से अख्तियार किया जाता है। तो ये कहना कि जो है वो फुलां किबला था और फुलां किबला हो गया, ये क्यों हो गया, तो किबला उनके हुक्म से है, अगर इसको करार दें तो ये है और इसको करार दें तो ये है। असल बात जो है वो क्या है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी है। दीन नाम है अल्लाह के अहकामात को मानने का, अगर अल्लाह के अहकामात को मान लिया जाए तो वो दीन, अगर ना माना जाए तो वो दीन नहीं है, चाहे जितना ही अच्छा लगता हो। इसके बाद अगले रुकू के अंदर ये फरमाया है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, वो अल्लाह के पास जो है वो जिंदा है। उनकी जिंदगी हमारे एतबार से तो खत्म हो गई है, लेकिन अल्लाह सुबहानहू व तआला उनको जिंदगी अता फरमाते हैं और वो जिंदा रहते हैं। उखरवी जिंदगी जो है या बरज़खी जिंदगी जो है वो उनकी जारी रहती है। उसके बाद अल्लाह सुबहानहू व तआला ने यह बयान फरमाया कि अल्लाह ताला की बहुत सारी नियामतें इंसानों के ऊपर हैं, आसमान और ज़मीन की तख्लीक के अंदर अल्लाह सुबहानहू व तआला की नियामतें हैं, समंदर के अंदर जो कश्तियाँ चलती हैं ये अल्लाह सुबहानहू व तआला की आयात हैं, निशानियाँ हैं, इनके अंदर गौर व फिक्र करके इंसान जो है अल्लाह सुबहानहू व तआला तक पहुँच सकता है। उसके बाद जो आखिरी रुकू आज पढ़ा गया उसके अंदर ये भी फरमाया गया कि इन्नल्लज़ीना याकुलूना, जो हक को छुपाते हैं उनका मामला बड़ा ही बुरा है। तो हक बात जो है वो कभी छुपानी नहीं चाहिए, हक बात को जो है वो हक समझते हुए हक तरीके से और हक नीयत से जो है वो बयान करना चाहिए। ये आज जो कुरान करीम पढ़ा गया है उसका खुलासा है। अल्लाह सुबहानहु व तआला से दुआ करते हैं कि जो कुछ कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا الله ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرما دیجیے یا اللہ سمجھ کے مطابق عمل करना आसान फरमा दीजिए या अल्लाह दुनिया और आखरत की हर खैर अता फरमाइए हर शर से हमारी हिफाजत फरमाइए दोनों जहानों की आफियत नसीब फरमाइए। رمضان المبارک کے اندر یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرمائیے، اس رمضان کے اندر ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ اس رمضان کے اندر ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، اپنی ناراضگی اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اس سلسلے کو استقامت کے ساتھ صحیح طریقے سے کہنے سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، یا اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔